أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يقنت منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها أجرها مرتين وأعتدنا لها رزقا كريما. يا وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمن الصلاة وآتين الزكاة وأطيعن الله ورسوله إنما يريد الله أهل البيت ويطهركم تطهيرا. واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا
نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير. اللہ تعالیٰ کی توفیق اور اس کی رحمت سے دورہ قرآن 2017 کے ڈے 24 دن کا آغاز کریں گے، اور آج کا ہمارا ہدف 22 پارہ ہے جو سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 31 سے شروع ہوتا ہے اور سورۃ یاسین کی آیات پہ رکتا ہے. بہت ہی خوبصورت پارہ ہے، اگر وہ کہنا چاہیے کہ نٹ شیل میں بند کرنا ہو. 22 پارہ جو ہے یہ ناشکری نیکیوں کی توفیق کو چھین لیتی ہے اور شکر گزاری سے نیکیاں بڑھتی ہیں. سب سے پہلے ہمیں اس پارے کے آغاز میں ازواج مطہرات دکھیں گی کہ کس طرح سے انہوں نے شکر گزاری کا رویہ اختیار کیا اور ناشکری سے بچتی رہیں، اسی لیے تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں رہیں. پھر اس کے بعد دوسری چیز، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا وجود آج امت کے لیے ایک بہت بڑی نعمت ہے جو آپ کے اسوہ حسنہ کو چھوڑ کر دوسری چیزوں پہ چل پڑتا ہے، اصل میں وہ ناشکری کا اظہار کرتا ہے. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے عورت کی حفاظت کے لیے اور اس کو باعزت کروانے کے لیے جو لباس اور حجاب کے سلسلے میں ہدایات دی تھی، اس کی ناشکری نے آج عورت کو ہر سٹیج پہ کھڑا کر دیا اور عورت ایک قسم کی کٹ پتلی بن گئی. پھر اس کے بعد اگلی چیز جو ہمیں اس میں نظر آئے گی وہ کیا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے نبی کے ذریعے سے معاشرے میں سے غلط رسومات کا خاتمہ کرتے ہیں. ہم سب مسلمانوں کو آج اس پہ شکر گزار ہونا تھا، لیکن ناشکری کیا کی، ہم نے اس سے بھی بڑے بڑے رسم و رواج کے پلندے اور بوجھ اپنے اوپر ڈال دیے. پھر اس کے بعد ایک اور چیز جو اس پورے پارے ہی میں سے انشاءاللہ ہم جمع کریں گے، اور وہ کیا ہے کہ اللہ نے یہ خوبصورت امانت انسان کو پیش کی تھی لیکن بعد میں ناشکری کی وجہ سے اس کا بوجھ سہار نہیں سکا۔ اس کے بعد اگلی سورت سبا ہے، پوری سورت ناشکریوں کی سزا ہے۔ آج ہم ایک ویڈیو بھی دیکھیں گے کہ جب نعمتیں ملتی ہیں اور چھنتی ہیں تو پھر ایک انسان کا اس کے اوپر کیا ذمہ بنتا ہے کہ وہ نعمتوں کے ہونے یا نعمتوں کے چھننے پر کیا ہوگا۔ قوم سبا نے اللہ کی نعمتوں کی ناقدری کی، اللہ نے ان کے سرسبز و شاداب باغات کو بالکل بنجر اور بالکل جڑی بوٹیوں میں بدل دیا اور بالکل وہاں کچھ نہ رہا۔ پھر اس میں ہم حضرت داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام کے ناطے سے اے ملو آل داؤد شکرا، عمل کرو اے داؤد کے گھر والو یا داؤد کی آل والو شکر کے ذریعے، اس کو پڑھ کر پھر اللہ کا شکوہ بھی پڑھیں گے۔ وقلیل من عبادی الشکور، میرے بہت ہی تھوڑے بندے شکر گزار ہیں۔ آیت 13 کا آخری حصہ ہے سورہ سبا۔ پھر اس کے بعد شیطان کا یہ گمان کہ اللہ تیرے اکثر بندے نہ شکرے ہی ہوں گے، یہ بھی سچ ہوتا ہوا آج اس بارے میں ہمیں نظر آئے گا۔ پھر اس کے بعد اگلی چیز شرک، اللہ قدرتوں والے رب کو چھوڑ کر ایسے لوگوں کے در پہ جا کے بیٹھ جانا جو منو مٹی میں چلے گئے، یہ ناشکرے پن کی ایک بہت بڑی علامت ہے۔ یعنی آپ کہہ لیجئے کہ شرک ناشکرے پن کا دوسرا نام ہے، جو اپنے رب پہ راضی نہیں وہ کیا کرے گا۔ پھر اس کے بعد اگلی چیز مال اور اولاد کی ہم پڑھیں گے، آیت 37 ہے سورۃ سبا میں، کہ اللہ نے مال اور اولاد دیے تھے کہ اس کا قرب حاصل کیا جاتا، لیکن وہی چیزیں انسان کو ناشکرہ بنا دیتی ہیں۔ اور اس کے بعد پھر ہم دیکھیں گے ناشکری کی بات اس شخص کی صورت میں کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنی آیتیں دیں لیکن وہ ان آیتوں کا بوجھ نہ سہار سکا اور ناشکری کے رویے پہ چلا گیا۔ اس کے بعد سورت فاتر آئے گی ہمارے سامنے، اللہ کا نام ہے الفاتر، یا اللہ تعالیٰ کے نام پہ یہ سورت ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے اس ناشکرے رویے کا اظہار کیا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ ان کے اوپر کوئی نعمت کے دروازے کھولتا ہے تو لوگ ناشکرے پن کا اظہار کرتے ہیں۔ اور خاص طور پہ پھر اس صورت میں ہمیں جو ایک سب سے بڑی فیلنگ ملے گی اور وہ کیا ہے کہ تم سب فقیر ہو، اللہ بادشاہ ہے، اللہ دینے والا ہے، غنی ہے، حمید ہے، لیکن تم اپنی اس فقیری کے باوجود بھی اس کی ناشکری کر کے اس کو ناراض کر دیتے ہو۔ اور پھر اس میں جو ہماری آیت تدبر بھی آئے گی انشاءاللہ سورت فاتر کی آیت نمبر 32، علم کی ناشکری کرنے والے لوگ، تین گروہوں کا آج ہم ذکر پڑھیں گے۔ علم لینے کے بعد پھر لوگ کن تین مختلف گروہوں میں بدل جاتے ہیں، اور اس کے بعد عمر بھر کی حسرت، قیامت کے دن جب لوگ کہہ رہے ہوں گے کہ ہمیں جہنم سے نکالا جائے تو کہا جائے گا اولم نعمرکم ما یتذکر فی، کیا تمہیں اتنی عمر نہیں دی تھی کہ تم اس میں نصیحت لیتے، اور تمہارے پاس تو ڈرانے والا بھی آ گیا تھا۔ آیت 37 ہے سورۃ فاتر کی۔ اور اس کے بعد پھر ہم آخر میں دیکھیں گے کہ ایک ایسا شخص اللہ نے بھیج دیا اس بستی کی طرف کہ جس بستی نے دو نبیوں کی ناشکری کی، جا رجل یسا، دور سے اللہ نے مدد بھیج دی، قریب والوں نے جھٹلا دیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہوئے شروع کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ناشکریوں سے بچائے۔ یاد رکھیے، ناشکری زندگی کا حسن ختم کر دیتی ہے، عبادت کی لذت ختم ہو جاتی ہے، عبادت تھکن کا نام رہ جاتا ہے، عبادت میں بندے کا دل ہی نہیں لگتا۔ آئیے دیکھتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات پہ ہی آیت ختم ہوئی تھی پچھلی، آیت 30 میں ہم نے پڑھا کہ اللہ نے اپنے نبی کی بیویوں کو ایک خاص آنر بھی دیا، اور ساتھ ہی بتا دیا کہ جس طرح تمہاری نیکیوں کا اجر زیادہ ہے اسی طرح تمہاری غلطیوں کی سزا بھی زیادہ ہے۔ آج کی آیت میں براہ راست انہی کو خطاب تو نہیں کیا لیکن اشارہ اسی طرف ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وَمَن يَقْنُتْ مِنكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ وَتَعْمَلْ صَالِحًا نُؤْتِهَا أَجْرَهَا مَرَّتَيْنِ وَأَعْتَدْنَا لَهَا رِزْقًا كَرِيمًا۔ نبی کی بیویوں کی بات کرنے کے بعد فرمایا، اور تم میں سے جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گی اور نیک عمل کرے گی اس کو ہم دوہرا اجر دیں گے، اور ہم نے اس کے لیے رزق کریم مہیا کر رکھا ہے۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہاں دوہرے اجر کی بات کیوں ہے؟ انسان دنیا میں عام لوگوں میں گھلا ملا رہے تو اس کی خامیاں اور خوبیاں بھی چھپی رہتی ہیں، کچھ لوگ جو اس کے بہت قریب ہوتے ہیں اس تک ہی اس کا اثر جاتا ہے، لیکن جب کسی اعلیٰ مقام پہ کوئی پہنچ جاتا ہے اور دوسروں کی نظریں لگ جاتی ہیں، مثلا کسی ملک کی ملکہ किसी सदर वजीर की बीवी, इसी तरह से अगर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखें तो मदीना में आने के बाद आपकी हैसियत एक हुक्मरान की हो चुकी थी, तो आपकी अजवाज उस दौर की फर्स्ट लेडीज थी। अल्लाह ताला ने उनकी बात करके यहाँ बता दिया कि देखो, अगर तुम जिस तंगी तुरशी में नबी के घर में रह रही हो उसके अंदर रहती रहोगी तो तुम्हें हम दूसरा अजर भी देंगे। पीछे वाली आयत जो हमने कल पढ़ी थी 28, उसी के साथ एक वाक्या है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियों ने तंगी तुरशी में आपका साथ दिया, क्योंकि आज के हमारे इस पारे की जो काबिले तकलीद शख्सियात रोल मॉडल्स हैं वो अज़वाजे मुतहरात हैं। उसी की थोड़ी सी बात करूंगी इन आयात पे, क्योंकि अगली आयत में भी उन्हीं की बात है। अगर आप देखें तो हज़रत आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह अन्हा के सिवा बाकी तमाम बीवियाँ या तो पहले से शादीशुदा होने के बाद मुतल्लिका थी या बेवा थी, कोई भी बीवी कुंवारी नहीं थी। और जब भी कोई औरत इस किस्म के मराहल से गुजरती है तो वो दुख में से गुजरती है, तकलीफ़ों में से गुजरती है। आमतौर पे ऐसे हालात किसी पे आ जाएं तो लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं, और ही मायूस हो जाते हैं, और ही गुनाह करते हैं। आपकी अजवाज को अल्लाह ने उस दुख और तकलीफ को खुशी से बर्दाश्त करने का सिला क्या दिया कि उसको आम औरतों से निकाल कर, सहाबियात में से निकाल कर वो महातुल मोमिनीन में शामिल कर दिया। जिस तरह के हालात थे वैसे ही गुजर बसर करती रही। सूरत रूम की वो आयतें जो कल हमने पढ़ी थी कि एक अच्छी बीवी होने के नाते हर हाल में राजी रही। अब हुआ क्या कि गज़वे खैबर हुआ, बहुत माल आया। खैबर की ज़मीनें ऐसे ही हैं जैसे आप कहें कि सोना उगलती ज़मीन है। अब मुसलमानों में अमूमी तौर पे मदीना शहर में सहूलत हो गई, घरों में चूल्हे चलने लगे। साहबा कहते हैं कि हमारी हालत नहीं बदली जब तक कि खैबर फतह ना हो, यानी इकॉनमी अच्छी हो गई, मदीना की गुर्बत कद ख़त्म हो गई। अब जब ये सब हुआ लेकिन नबी के घर में अभी भी दो दो महीने तक चूल्हा नहीं जलता, तो अजवाज मुतहरात ने बिल्कुल फितरी मुतालबा किया। और आज एक औरत का ये हक है कि वह अपने मर्द से कहे कि आप कवाम है, लाइए घर में खाना पानी। कोई उन्होंने कपड़े नहीं मांगे थे, जूते नहीं मांगे थे, डायमंड्स नहीं मांगे थे, हीरे मोती नहीं मांगे, बस इतना कह दिया कि अल्लाह के नबी आप हमें ज़रा सा थोड़ा सा तो ज़्यादा खर्चा देना, क्योंकि अब बाकी घरों में तो आ रहा है। अब ये मुतालबा एक आम औरत का होता तो बिल्कुल जायज़ मुतालबा था, लेकिन वही बात है कि वो जिनके दर्जे हैं सिवा उनकी खताएं भी छोटी छोटी पकड़ी जाती हैं। अल्लाह के नबी को महसूस हुआ कि मेरी बीवियां नाशुक्री कर रही हैं। देखिए फिर यहाँ नाशुक्री है, नाशुक्रापन है। तो उन्होंने नाराज होकर, और असल में नाराजगी नहीं थी, ये तरबियत थी। याद रखिए जो बड़े मुकाम पे पहुंच जाते हैं ना, अक्सर लोग कहते हैं ये नाराज हैं, वो नाराज नहीं होते, वो तरबियत कर रहे होते हैं आपकी मेरी। क्यों? कि इस तरह वो ना करें तो आपको मुझे तो कभी अपनी गलती का एहसास भी ना हो। तो आपने सबक सिखाने के लिए अपनी बीवियों से कहा कि मैं एक महीने के लिए तुमसे कतः ताल्लुकी करता हूँ, इसको इला कहते हैं। और आप अपने घर ही के ऊपर एक चबूतरे में चले गए, और 29वें दिन के बाद पलट भी आए। जब आपको याद दिलाया गया कि आपने तो एक महीने की कसम खाई थी, तो कहा क्या कभी महीना 29 दिन का नहीं होता। ये आपकी खूबसूरती थी कि आप हमेशा सहूलत वाला रास्ता पसंद करते थे। तो बहरहाल इस मौके पर अल्लाह के नबी ने अपनी बीवियों से कहा कि आपको मैं चॉइस देता हूँ, आप मेरे साथ रहना चाहती हैं, तंगी तुरशी में रहेंगी, क्योंकि नबी का मुकाम आला है। तो वो चीज़ें जो मकसद के रास्ते में रुकावट बने ना, फिर उसको हटानी पड़ती हैं। आप देखिए कि बहुत दुनिया का होना, गुना ना भी हो, मकसद से हटा देता है। वो कहते हैं ना कि अतायर ला होती उस रिस से मौत अच्छी जिससे आती हो परवाज में कोताही। तो अल्लाह के नबी ने जो लाइफस्टाइल अपने लिए चूज किया था उसमें आप अफोर्ड नहीं कर सकते थे बहुत कुछ। हमारे हाल अब अफोर्ड सुनकर फौरन आ जाता है कि अच्छा पैसे नहीं है, नहीं वक्त नहीं है संभालने का, तवज्जो बढ़ती है, डिस्ट्रैक्शन हो जाती है, इतनी चीज़ें पड़ी हुई हैं तो मेरी तवज्जो इधर से हट जाती है। तो बहरहाल आपने चॉइस दी थी, आयत तहजीर कहते हैं आयत नंबर 28 जो पीछे पड़ी हमने, तो आपने चॉइस दे दी कि भाई आप अपना फैसला ले लीजिए, फिर आपको मैं खूब माल भी दूंगा और आपको रुख्सत करूंगा। ये नहीं कि आपको डांट के रुख्सत करूंगा, माल दूंगा, लेकिन यह है कि आपको अगर मेरे साथ रहना है तो इन्हीं हालात में रहना है। साथ ही आपने एक मशवरा दिया और आपने कहा कि वैसे आयशा आप अपने वालदैन से मशवरा कर लीजिए, क्योंकि अल्लाह के नबी को यकीन था कि आयशा तो आयशा है, अबू बकर कभी नहीं ये मशवरा देने देंगे कि छोड़ दो। तो उस वक्त फिर आयशा ने कहा कि अल्लाह के नबी मैं आपके मामले में किसी से मशवरा करूंगी, मैं तो अल्लाह और उसके रसूल को चूज करती हूँ। और फिर यही बात बाद में सारी बीवियों ने कही। तब यहाँ देखिए कि मेरे आपके लिए अजवाज मुतहरात किस तरह से एक नमूना है। ये औरतें जिन्होंने आज नबी की जिंदगी में इतनी तंगी तुरशी सही, आपको पता है कि खिलाफत राशिदा का दौर हुआ, खास तौर पे उम्र फारूक का दौर, जब दुनिया के खजाने उमड़ उमड़ के मुसलमानों पर पड़े थे, कैसरो किसरा के पहने हुए किलोज के हिसाब से जो उनके जेवरात थे, कंगन थे, चूड़ियां थी, वो मुसलमानों के पास आ रही थी। इतनी कुशादगी आ गई कि 70,000 दिरहम तक एक एक अजवाजे मुतहरा के पास कई दफा जंगों में आता और वो खजूरों की तरह झाड़ कर उसको वहां से उठ जाती थी। क्यों? इन्ना माल उसरी युसरा, फइन्ना माल उसरी युसरा, हर उसर के बाद युसर है। तो याद रखिए कि अगर आज आप दीन के नाम पे थोड़ी सी तंगियां सह लेंगे, अल्लाह का वादा है कि वो तंगी हमेशा नहीं रहती। तो अल्लाह ताला ने यहाँ यही बात करके अब मुझे आपको भी यही सिखाया, आपका मेरा क्या काम है। देखिए, दीन अपनी कीमत मांगता है और इल्म तो अपनी कीमत बहुत ही मांगता है। हम नमाज पढ़ के दीनदार तो हो सकते हैं, लेकिन इल्म पाने के लिए दुनिया की बहुत सारी अट्रैक्शंस और बहुत सारे हंगामों से अपने आप को वक्ती तौर पे जुदा जरूर करना पड़ता है, लेकिन ये हमेशा नहीं रहता। मैंने नहीं देखा कि कोई तालिब इल्म हो और सारे फंक्शंस भी अटेंड करे, सारी दावतों में भी मौजूद हो, हर शादी में भी हो, और फिर भी वो फर्स्ट आए या कामयाब हो। आपके अपने घरों में आपके बच्चे हैं, जब इम्तिहान होने वाले होते हैं आप सब कहीं जाते हैं, वो नहीं जाते। कितनी मेहनतें करके, आपने भी मास्टर किया होगा, आपने कितनी मेहनत करके मैट्रिक किया होगा। इसी तरह इल्म आने के लिए अगर हम कुछ वक्त, एक सर्टन अमाउंट ऑफ टाइम, 1 साल भी हो सकता है, 2 भी होता है, ये तो आपकी चॉइस पे चलता है कि आपको हर दिन करना है, हर दूसरे दिन करना है, या आपको हफ्ते में 4 दिन करना है, 5। लेकिन एक दौर अगर आप अपनी जिंदगी में गुजार लें जिसमें आप पीछे जाएं, आपकी अना पे चोट पड़े, उसके अंदर आप अपने आप को इस तरह पेश कर दें कि मुझे लताड़ो, मुझे तोड़ो, मुझे फोड़ो, जो कहते हो करो, मैं करने को तैयार हूं। अगर आप ऐसा वक्त 1 साल 2 साल 4 साल जो जितना जिसका नसीब है गुजार ले, सारी जिंदगी की दौलत आपके पास, खैर आपके पास, शोहरत आपके पास, माल आपके पास आता है। यही बात जहां अल्लाह ताला ने बताकर हम सबको कह दिया, वह मैं यकनुत मिन कुन्ना, और कनूत क्या होता है? आजजी और दवा। लेकिन जब बेसब्रपन होता है, थोड़ी सी चीज पे आप राजी होके बाकी चीज की नाकदरी कर देते हैं, फिर ये चीज नहीं मिलती। दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला हमें कनूत अता फरमाए, आजजी अता फरमाए, हमारे अंदर ठहराव आ जाए और हम अमल सालेह करने वाले बन जाए। आगे फरमाए, या निसान नबी ये लस्तुन्न का हदम मिन निसा, नबी की बीवियां तमाम औरतों की तरह नहीं हो, अगर तुम अल्लाह से डरने वाली हो तो दबी जुबान से बात ना किया करो कि दिल की खराबी का मुबतला कोई शख्स लालच में पड़ जाए, बल्कि साफ सीधी बात करो। औरत की बातचीत का यहाँ तस्करा है। अल्लाह ने औरत और मर्द को इस दुनिया के निजाम को चलाने के लिए भेजा। सिर्फ मर्दों से भी दुनिया नहीं चलती और सिर्फ औरतों से भी नहीं चलती। तो जब दो लोग मिलके काम करते हैं तो उनको आपस में इंटरेक्शन तो करना पड़ता है। ये कभी नहीं हो सकता कि दो कलीग्स और वो कभी बात ना करें। तो दुनिया के इस निजाम को चलाने के लिए औरत को मर्द से और मर्द को औरत से बात करने की इजाजत है। इजाजत क्या है? जरूरत है, और इसमें कोई हरज नहीं। जिस चीज से यहाँ रोका गया वो क्या है? फला तहदान बिलकौल। अगर आप इस लफ्ज को समझ आए ना, तो वो सारे सवाल कि क्या औरत के पास पर्दा है, और ये सारे सवाल कब आते हैं? जब दीन सीखते हैं। काउंटर्स में बैठी औरतों से लचका लचका के टिकट्स लेते देते कोई हर्ज नहीं। हर दिन ग्रोसरी की शॉप पे टिल पे खड़ी हुई खवातीन से हेलो हाय हाउ यू डूइंग करते कोई मर्जे सवाल नहीं पूछेगा। गाने सुनते, फिल्में देखते, खबरें सुनते कोई ये सवाल नहीं करता। जहां बात आती है दीन की तो लोग एक सवाल करते हैं कि औरत की आवाज पर्दा है। अगर आप इसको लिटरली लें, अब आप घर में अकेली थी, बाहर बेल बजी और आपने इंटरकॉम से हेलो कहा, बाहर एक मर्द है, हराम हो गया, गुने की बात है। फिर तो एक औरत अपने घर में आने वाले फोन कॉल को भी अटेंड नहीं कर सकती। आपका ड्राइवर, आपका आपके घर में काम करने वाला कोई मुलाजिम, माली बाबा आ गया, आपने उसको कुछ इंस्ट्रक्शंस देनी थी, आप नहीं कर सकते। फिर तो सिंपल सी बात है कि अगर लिटरली एक औरत की आवाज पर्दा है, तो एक औरत के साथ हर वक्त फिर एक मर्द होना चाहिए जो उसका महरम हो, या बाप हो, या भाई हो, या बेटा हो। क्या लिटरली ये पॉसिबल है? तो गोया के दुनिया में जितने मर्द हैं उसमें से आधे बेकार होते ना, कारोबार ना करते, क्योंकि जहां बीवी वहां शौहर, जहां बेटी वहां बाप, जहां बहन वहां भाई। क्या ये पॉसिबल है? और क्या सहाबियात अल्लाह के नबी से आके बात नहीं करती थी? और चले ये भी कर लें, आप उमरा कर सकती थी, हज में जाके वहां के अरकान अदा कर सकती थी। ये बिल्कुल एक अननेचुरल बात है, और मैं कहती हूँ ये हद से बड़े हुए तकवे की बात है। हाँ करो क्या, बात में लोच ना हो, सीधी स्ट्रेट फॉरवर्ड। देखिए ये दीन की बात है या दुनिया की बात है, ये देवर भाभी से बातें कर रहा है या जेठ जेठानी के साथ आपका कोई मामला चल रहा है, या आप अपने माली बाबा से हैं या नेबर में, या कोई दीन सीखने वाला है या सिखाने वाला है, या आपका दीनी मामले में किसी से मीटिंग हो रही है, कुल कौलन सदीदा। इसमें बेतकल्फी नहीं होनी चाहिए। ये भी नहीं कि फिर आप निकाब पहनकर बातें ही ऐसी लच्छेदार करने लग जाए और आप जो बाजारों में शॉपिंग करें और भाई जान कह के चीजें बढ़ाते रहे। हर औरत को खूब पता होता है कि मेरे बोलने के स्टाइल में क्या तरीका है जो दिल फेंक है, किधर लोगों के दिल जाते हैं, नरम बात सीधी बात। और इसमें कोई ये भी नहीं है कि आप आर्टिफिशियली गुस्से की बातें करें और अपने आप को रखें, सीधी सी बात है कि आप अपने दिल के अंदर हर बात को क्लियर करके अगले बंदे को अपनी बात का पैगाम दे दें। जितना मुमकिन हो उतना कम इंटरेक्शन करें। घर में मर्द है तो आपको आगे बढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, घर में बेटा है तो आपको डोर पे जाने की कोई जरूरत नहीं है। जब अल्लाह ने एक औरत को इतना प्रोटेक्टेड किया है, इतनी कीमती चीज कर दी, तो दूसरी बात की नहीं रहने जरूरत। अगला हुक्म, अपने घरों में टिक कर रहो और साबिक तौर जाहिलियत की सी सजदच ना दिखाती फिरो, नमाज कायम करो, जकात दो और अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करो। अब आप देखिए कि इसमें अब फिर दोबारा बात है कि अगर आप इस आयत को सिर्फ इस आयत से समझें, यानी आप कहें कि सुन्नत से काट के अगर इस आयत को समझेंगे ना, तो सीधी सी बात है कि आप घर से नहीं निकल सकती। कर नफी बयूती कुन, टिकी रहो, खबरदार निकली तो। लेकिन आप हदीस खोले, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने औरतों को कहा, बुखारी की रिवायत है यानी आयशा से रिवायत है कि अल्लाह के नबी ने फरमाया कि अल्लाह ने औरतों को उनकी जरूरियात के लिए बाहर निकलने की इजाजत दी है। अल्लाह के नबी के दौर में औरतें मस्जिद में जाती थी, हज और उमरे पे जाती थी। अगर आप घर से निकल ही नहीं सकते तो आपकी बेटी को फिर हॉस्पिटल में भी नहीं था पैदा होना चाहिए, फिर वो सिर्फ घर में पैदा होती और वहीं मर जाती। याद रखिए आज जो हदीस के ऊपर लोगों ने चोटें डाली हैं ना, ये सारी आयतें इसका रद्द दिखा रही हैं कि हदीस को पढ़े बगैर आप कुरान नहीं समझ सकते। फिर या तो एक एक्सट्रीम पे जाएंगे कि कुछ नहीं करना, या दूसरी पे जाएंगे कि ये दीन है ही कोई नहीं। हमेशा याद रखिए कि नॉर्मल रहे, हमेशा याद रखिए अपने लिए एक असूल बनाए, अगर दूर तक जाना है तो दरमियानी चाल से चले। बहुत भागेंगे, चंद कदम चल के सांस थक जाएगा, सांस आएगा और आप नहीं चल सकेंगे। और अगर इतना स्लो चलेंगे कि आपकी मंजिल ही दूर से दूर होती जा रही है, आपकी हिम्मत टूट जाएगी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, खैरुल उमूरी औसतिहा, बेहतरीन उमूर मिडल है, बी मॉडरेट, बीच में रहिए। तो लिहाजा घर से औरत निकले, हाँ शरायत है, उलमाए किराम ने 9 शरायत रखी हैं, आप उसके ऊपर चलिए। आप अपने घर से निकले वाकई जरूरत के लिए निकलें, और माँ बाप को मिलना भी एक जरूरत है। अपने बच्चों को अगर और कोई भी नहीं है और आप जाके पैदल अपने करीब से जाकर लेके आती हैं, जाइए। आपको किसी बीमार की आदत के लिए जाना है, अपने शौहर के साथ जाइए, निकाह में जाना है, वली में भी जाना, लेकिन असल बात यह है कि जरूरत वाकई हो। फिर उसके बाद देखिए कि औरत इस रंग रूप में ना निकले कि जिसमें अगली आयत में जिक्र आ रहा है, तबर्रुजल जाहिलियत लूला। अब ये कौन सा होता था दौरे जाहिलियत में, लौंडियां बिल्कुल अपने जिस्म को खोलकर, यानी आम जैसे हमारे कल्चर में मासियां निकलती हैं, एक दुपट्टा लेती थी और उसको यूं बांध के ना, तो सर से पीछे गुजार के, जैसा एक हमारे यहाँ बड़ा मारूफ तरीका है वुजू के वक्त दुपट्टा लेने का, और बाज लोग तो कहते हैं ये फर्ज है, इस तरह दुपट्टा ना लपेटा जाए तो वुजू होता ही नहीं है, ये चीज दुरुस्त नहीं है। यानी उस दौर में औरतें इस तरह स्काफ और अपने सर के दुपट्टे लेती थी। ये याद रखे, उन्होंने ये नहीं कहा था कि जिसके दिल में अल्लाह और रसूल की मोहब्बत का पट्टा, उसको कोई दुपट्टा नहीं चाहिए, नाउज़ु बिल्लाहि मिन ज़ालिक। ये तो आज आपके हीरो शो करते हैं ना ये बातें, ऐसा नहीं था, लेती थी लेकिन सिर्फ सर ढकता था और सीना खुलता था, उस पर आयत उतरी और उसमें हार और बुंदे जाहिर होते थे। इसकी बहुत सारी डिटेल्स हैं अल्हम्दुलिल्लाह, इसके ऊपर एक पूरी अलग से सीडी बनी थी, और मैं चाहूंगी कि आपको आज जरूर भेज दी जाए। पूरे कुरान में जहां भी लिबास, हिजाब, पर्दा और निकाब का जिक्र है, वो सारी आयतें जमा की गई। तो मेरा ख्याल है कि मैं इस वक्त इतना अच्छा बता ही नहीं सकती जितना आप वहां सीख सकते हैं। पीछे आप सूरत नूर में पढ़ चुके, सीनों पे कपड़ों को डालो, बस इस पे इतना सा याद रखिए कि अगर सर के बाल तो छुप जाएं जो काले रंग के हैं, और अगर खाली पड़े हो तो खूबसूरत भी नहीं होते, ये तो जिस्म के साथ लगे हुए बाल खूबसूरत हैं। अगर उनको छुपाना है स्काफ की सूरत में, तो सीने को भी छुपाना है। जब घर से बाहर निकलें अपने अबाय को अपने स्काफ को शीशे से देखिए क्या छुप रहा है क्या दिख रहा है। बाज़ दफ़ा तो हिजाब और ज़्यादा खूबसूरती का जरिया बनता है और जितने स्टाइल्स के साथ लिया जाता है ठीक है, नया नई बच्ची स्काफ लेने लगी वो स्टाइल बना ले वो कुछ भी कर ले, लेकिन ये आखिरी मंजिल नहीं होनी चाहिए। घर से निकले घर में आए तो आप बिल्कुल एक ऐसी रूप में आए कि जिसमें आपको कोई केयर ही नहीं, केयरलेस एटीट्यूड होना चाहिए एक औरत का। मेरी नज़र में पर्दा क्या है, ना उसको अपने अबाई की कोई फिक्र है कि ये फटा हुआ है कि नहीं टूटा हुआ है। मैंने बाहर कभी अपने आप को बेगम साहबा बना के नहीं पेश किया, परस पकड़ के टुपक टुपक, क्यों? बाहर वालों से मुझे क्या लेना, अगर मुझे कुछ अच्छा लगना है तो मैं उनके सामने लगूं जिनकी मुझे कोई केयर है। तो हमेशा याद रखे पर्दे के बारे में, अगर आज मेरे से कुछ सुनना है घर से बाहर निकलते हुए औरत ऐसी लगे कि उसको पता ही नहीं क्यों मुझे देख रहा है, बिल्कुल रिलैक्स्ड। और अगर आप घर के बाहर और घर के अंदर में एक ही प्रोटोकॉल दिखा रहे हैं तो इसका अंदर समथिंग रॉन्ग है। इसी में आगे एक और आयत आएगी उस पर इस पर इंशाल्लाह बात होगी। फिर उसके बाद आप देखिए आज लोग इस चीज़ को भी बहुत इशू बना लेते हैं। बाज़ दफ़ा आप देखिए कि सिर्फ बालों को ही छुपा लेने को इतना बिग इशू बना दिया जाता है कि कितने मसले उस पर उठ जाते हैं। कोई दीन आपको मुझे ये नहीं कहता कि सजी संवरी दुल्हन को स्टेज पे लाके खड़ा कर दो, और दुनिया का कोई मुल्क आपको मुझे इसमें मजबूर नहीं करता कि अपनी इज्जत और प्यार और मोहब्बत में सजी बेटी को पली बेटी को लाकर पूरे हाजरीन के सामने स्टेज पे सजा दो कि उसके जिस्म का एक एक अंग भी दिखे, उसके कपड़े भी दिखे, उसका जेवर दिखे। क्या ये तबरुजल जाहिलियत लूला नहीं है? बस यहाँ तो चंद सवाल ही खुद से पूछ लेते हैं कि दुल्हन का सज के संवर के सारे गैर मर्दों के सामने बैठना क्या तबरुजल जाहिलियत लूला में तो नहीं आता? दुल्हन का खूबसूरत रोशनाइयों में चल के दूर से आना और वीडियो के रोशनी में उसका बनना क्या ये तबरुजल जाहिलियत लूला तो नहीं है? देखिए लोग कहते हैं कि ये चेहरे का पर्दा है कि नहीं, मैं कहती हूँ उसको तो जरा छोड़ दो। अगर जो कहते हैं कि नहीं भी है, कहते हैं कई अरबी उलमा भी कहते हैं नहीं है, लेकिन ये कोई नहीं कहता कि चेहरे को 7 सिंगार 16 सिंगार करके खुला पेश कर दो। जो कहते हैं चेहरे का पर्दा नहीं, वो कहते हैं खुला बिल्कुल मुंह पे अगर कोई कोल्ड क्रीम लगानी है कि चेहरा खिंच रहा है या स्किन फट ना जाए उसके बाद आप ठीक है। ये कोई नहीं कहता जो हमारे पाकिस्तानी कल्चर की खवातीन का पर्दा, इसको तो दुनिया के चारों इमाम छोड़ दीजिए, आप पीछे पूरे दीनदार आज से लेकर नबी सल्लम के दौर तक ले आइए, किसी एक दीनदार ने ये नहीं कहा कि सजा संवरा चेहरा और उसके ऊपर आप खूबसूरत स्काफ पहन के तो निकल जाए, ये कोई नहीं कहता। अल्लाह ताला से ये दुआ करें कि हमें दीन की समझ आए। हम दूसरों के कंधे पे तलवार रख के दूसरों के कंधे पे रख के चलवाते हैं, कोई लगाई दे पाबंदी और हमें बदनाम कर दे, नहीं। आप खुद तो देखिए कौन सा दीन आपको मुझे ये सिखाता है जो कुछ हम अपनी महफिलों में करते हैं, आप उसको रोकिए बाहर की पाबंदियां खुद ही रुक जाएंगी। ये सजा है, ये डिप्लोमेटिक मुसलमानों की सजा है। जब दीन कुछ इस किस्म का पिक एंड चूज का इजहार बन जाए, निकाह के वक्त लड़के लड़की को अलग बिठा दिया, मर्द थोड़े अलग हो गए, उधर मौलवी साहब आए हैं, खुतबा हो रहा है, दर्स हो रहा है, ये हो रहा है, और जो ही वो दुआ खत्म पर्दे खोल दो ठंड ना, और फिर थोड़ी देर में वही हॉल जो सेग्रीगेटेड था वो एक चूचू का मुरब्बा बने। फिर ये तो दुनिया के किसी मुल्क ने आपको मुझे मजबूर नहीं किया, ये तो मेरी आपकी अपनी न समझी और हमारा अपना गैर शौरीपन होना है। दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला हमें ऐसा न रखे। अब सवाल पैदा होता है दौरे जाहिलियत की सी सजदज ना दिखाओ तो क्या औरत पे सजदज नहीं दिखा सकती? तीन लफ्ज लिख लें, एक है आराइश, एक है जिबाइश, एक है नुमाइश। आराइश जायज है, आप घर से निकलते हैं, कंघी करते हैं, आप अपने आप को साफ सुथरा करते हैं, इसको आराइश कहते हैं, कोई हरज नहीं। जिबाइश उससे अगला दर्जा है, कुछ ज्वेलरी पहन लेते हैं, कोई आप मैचिंग स्कार्फ ले लेते हैं, कोई हरज नहीं। नुमाइश जायज नहीं है, डिस्प्ले करते नहीं जायज। पहने तो हदीसे नेमत के लिए पहने। मुझे किसी ने कहा कि आप ये बाय फेंक क्यों नहीं देती, मैंने कहा आपको पता है किसने मुझे दिया है? आज भी मेरी बात सुन रही होंगी हमारी एडमिन्स, उनमें से किसी की माँ ने मुझे ये बाय भेजा था सऊदी अरब से, उनको नहीं पता मैं आज तक सिर्फ इसलिए इसको पहन रही हूँ कि वो दुनिया से जा चुकी है, और जब भी मैं शौर से वो बाया पहनती हूँ तो मुझे वो याद आती है और मेरे दिल से उनकी दुआ निकलती है। आप बस इसलिए पहनते हैं कोई चीज़ कि किसी का सदका जारिया हो जाए। कई जूतियां, कई चीजें, मैंने तो कई अपनी माँ की चीजें, नानी की चीजें सिर्फ रखी इस नियत से भी है कि उनके सवाब के लिए पहनती हूँ। ये तो दूसरों का अजर है। कोई चीज अपने जिस्म पे आप इस सोच से पहन ले कि जिसने दी है, जिसकी मोहब्बत है, उसको इससे फायदा हो जाए, और आप पहने इसलिए कि लोग के वाह क्या नुमाइश करके पेश कर रहे हैं, ये चीज जायज नहीं है। अपने शौहर के लिए एक औरत पहने, सजे संवरे 16 नहीं 20 सिंगार करे, इट्स ओके, बट जब आप उसको दौरे जाहिलियत के तौर तरीकों पर ले, ये दुरुस्त नहीं है। फिर आगे फरमाए नमाज कायम करो, ज़कात दो और अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करो। 3 सेकंड तक इस पे भी गौर कर लें। नमाज तो है, ऐसे मौक़ों पे तो नमाजें भी फौत हो जाती हैं। ज़कात है, کیا عورت اپنے زیورات کی زکات دیتی ہے؟ خود سے پوچھئے، کیا میں نے زکات دے دی اپنے زیور کی پچھلے سال سے اب تک، جتنے دیر میرے پاس زیور رہا؟ اور یاد رکھیے، اگر آپ کے شوہر میرے شوہر نہیں دیں گے، ان کو گناہ نہیں ہے، وہ دے دیں، ان کا احسان ہے، لیکن نہیں دیں گے تو کل ان سے نہیں مجھ سے اور آپ سے پوچھا جائے گا، کیا میں نے اپنے پیسوں کی زکات دے دی ہے جو میرے پاس ایک سال سے رکھے ہوئے ہیں؟ اصل تو یہ سوال ہے، جب ہم اپنی ذات پہ اتنا لگاتے ہیں تو صرف زکات دینی چبھتی ہے، آگے والی باتیں تو بڑی مشکل باتیں. فرمایا، اللہ تعالیٰ تو یہ چاہتا ہے کہ تم اہل بیت نبی سے گندگی کو دور کرے اور تمہیں پوری طرح پاک رکھے. یہ دیکھیں کتنا پیارا جملہ ہے. او بہو، او بیٹیو، مسلمان عورتوں، لڑکیوں، تم کیوں پریشان ہوتی ہو ان موضوعات کو سن کر؟ اللہ تمہاری عزت کروانا چاہتا ہے. تم قیمتی ہو. دیکھیں جو قیمتی چیزیں وہی چھپاتے ہیں. کوئی آپ سے کہے کیا میں آپ کا بینک اکاؤنٹ نمبر لے سکتا ہوں، ذرا بتائیں آپ کے اکاؤنٹ میں کتنے پیسے ہیں؟ کہنا ہی ہے جو نیٹ کی ملتی ہے، کئی چیزیں ہوتی ہیں، کیا میں آپ کا کارڈ یوز کر لوں؟ تو ہم اس کو گھور کے دیکھیں گے، خبردار تم نے میری چیز پہ نظر، کتنا زیور ہے آپ کا، آپ کا لاکر کدھر ہے، اس کی چابی کدھر ہے؟ اس پہ تم اتنے اگریسو، اور اس سے قیمتی بہو بیٹیاں ہم سارا دن بازاروں اور باہر کی زینت کر دیتے ہیں اور ہمیں اس کی کوئی پرواہ نہیں. اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ بیٹیاں، عورتیں، عورت قیمتی چیز ہے. لکھ لیں، اسلام میں عورت بڑی قیمتی چیز ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ میں تمہیں اس کے اندر قیمتی کر دیتا ہوں. اور اصل بات یہ کہ ہم اس کو ماڈرنزم کہتے ہیں، اسلام اس کو تبرج الجاہلیت الاولی کہتا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا کرے کہ ہماری سوچ سیدھی ہو جائے.